सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।
आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति, दिल से कहिए ओम शांति, थोड़ा मुस्कुराकर खुशी से उमंग उत्साह से कहिए ओम शांति। आज का जो हमारा विषय है वो है स्टॉप फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए कुछ चंद कुछ क्षण विचार करने के लिए, उस पर चिंतन करने के लिए पॉज करें। किसी भी गाड़ी में ब्रेक होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जिंदगी में हम ब्रेक लगाना भूल जाते हैं। क्या खूब किसी ने कहा है, जिंदगी की हर समस्या ट्रैफिक सिग्नल के लाल बत्ती की तरह है। जिंदगी की हर समस्या ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह है, यदि थोड़ा प्रतीक्षा कर लोगे तो वो हरी हो जाएगी। थोड़ा प्रतीक्षा अगर कर लोगे, थोड़ा रुक जाओगे, थोड़े अंदर संयम हो जाएगा तो वो लाल हरी हो जाएगा। हरी का दो अर्थ है, एक तो आप आगे बढ़ सकते हैं और एक है हरना, विघ्न हरता गणेश जी को कहते ना, इसका मतलब हम अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। आज का जो विषय है थोड़ा सा टेक्निकल विषय है, मैं उसके टेक्निकल बातों पर भी थोड़ा सा जाऊंगा ताकि हमें पता चले कि मानव जीवन कितना अमूल्य है, लेकिन वास्तविकताएं इस दुनिया की उससे थोड़ा सा भिन्न है। उनको हम थोड़ा सा समझेंगे और ये भी समझेंगे कि सुरक्षा के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, जिसकी वजह से आज दुर्घटनाओं की संख्या इतनी ज्यादा है। मैं आपको भारत सरकार के 2016-2017 के आंकड़े आपको बताऊंगा और मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है, थोड़ा सा वो आपको टेक्निकल लगेगा लेकिन उसको समझिए और फिर जो बिहेवियरल बातें हैं जो हमारे व्यवहार से संबंधित हैं जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सेफ्टी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में स्टॉप फॉर सेफ्टी, हमारा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के द्वारा हम इसको आपके सम्मुख रख रहे हैं। WHO का मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पर देखें, WHO के आंकड़ों के अनुसार 1990 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेजर कैजुअलिटीज या डिजीज या इंजरी में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 9वें नंबर पे था। सबसे नंबर 1 निमोनिया था, फिर डायरियल डिजीजेस नंबर 2 में था, ऐसे करके करके 9वें नंबर पर सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु या फिर तकलीफ रोड एक्सीडेंट से होता था। और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सन 2020 अभी कुछ महीने ही बचे हैं और WHO के रैंकिंग के अनुसार ये 9वें नंबर पे रहने वाला जिसका सबसे ज्यादा मृत्यु या फिर इंजरी करता है वो अभी तीसरे नंबर पर आ गया है। नंबर 1 है हार्ट डिजीज, नंबर 2 है डिप्रेशन, यूनिपोलर डिप्रेशन, एक होता है बाइपोलर डिप्रेशन, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, मानसिक रोग उसके कारण सबसे ज्यादा लोगों को नंबर 2 लेवल पर तकलीफ होती है, और नंबर 3 आपको ये सुनकर देखकर अचरज लगता होगा कि कैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन रोड एक्सीडेंट को बीमारी का दर्जा दे रहा है। दे हैव कंसिडर्ड रोड एक्सीडेंट एज एन एपिडेमिक, और आप उसके गिनती में नीचे देखेंगे तो 8वें नंबर पे है वॉर, युद्ध, लड़ाई, आतंकवाद। मुझे याद आता है हम पंजाब में रोड सेफ्टी का कार्यक्रम कर रहे थे, वहां हमारे जो रोड ट्रैफिक कमिश्नर थे उन्होंने कहा, गिरीश भाई पंजाब में आतंकवाद के समय पर आतंकी हमलों में जितने लोगों की मृत्यु हुई है उससे कई गुना लाखों लोगों की मृत्यु सड़कों में हो गई है। हमको आतंकवाद की समस्या बहुत क्रिटिकल नजर आती है लेकिन सड़क सुरक्षा या सड़क में होने वाले दुर्घटनाओं में हमारा इतना ज्यादा ध्यान नहीं गया है। उसकी बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। रोड एक्सीडेंट्स इन 2017 स्टेट वाइज, आपको ये जानकर बहुत अचरज होगा कि भारत में वो लाल रंग का जो आपको स्टेट्स दिख रहा है जिसमें तमिलनाडु, केरला, मानते हैं केरला भारत में 100% लिटरेट स्टेट है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वहां पे एक्सीडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहां पर रोड एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। नंबर 2 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान, ये नंबर 2 कैटेगरी पर आता है। आप में से कितने लोग यहां पर साउथ इंडिया से हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, प्लीज हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, थोड़े कम संख्या में, फिर भी ये बहुत अचरज की बात है कि ये स्टेट्स जो हैं कंपैरेटिवली नॉर्दर्न स्टेट से थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे। ये मैं 2016-2017 के आंकड़े आपको बता रहा हूं। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स वैसे देखने में तो थोड़ा परसेंटेज में थोड़ा सा कम हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन किल्ड वो लगभग 1.5 लाख 2016 में था, 2017 में 1,47,000। नंबर ऑफ पर्सन इंजर्ड इसमें थोड़ी सी कमी है, 4.94 लाख से 4.7 लाख हुआ है। ये सब इन परसेंटेज पॉइंट है, थोड़ा सा कम है बट उसका उतना ज्यादा हमको असर दिखता नहीं है। अगर मैं आपको रोड एक्सीडेंट रजिस्टर्ड व्हीकल के हिसाब से अगर हम सालाना का देखें, 1970 और 2017 में अगर हम देखें, रोड एक्सीडेंट्स पर लाख पीपल में 465 लोगों की एक्सीडेंट्स हुआ, उसमें डेथ जो 15 लोगों का पर लाख होता था वो अभी 148, इतना ज्यादा बढ़ गया है। फेटल एक्सीडेंट्स मतलब जिसमें मृत्यु हो, बहुत सीरियसली इंजर्ड हो, जीवन भर वो अपाहिज या अपंग बन जाए, माइनर इंजरीज, नॉन इंजरीज, ये भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 0.9% 1% 2016 और 2017 के आंकड़ों के अनुसार। अब टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, हेड ऑन कोलिजन मतलब दो गाड़ियां आपस में आके टकरा जाए, या पीछे से कोई गाड़ी आके आपको मारे, या फिर कोई हिट एंड रन करके चला जाए, या फिर पैदल चलने वाला जो पेडिस्ट्रियन है उसको कोई टक्कर मारे, या साइड से आकर टक्कर मारे, या व्हीकल ओवरटर्न, ये सब आप अगर देखेंगे तो 2016 में करीब 4,80,000 ऐसे एक्सीडेंट्स हुए, जो अभी लगभग 4,64,000 है। ये सिर्फ 2016-2017 के आंकड़े हैं, 2019 के आंकड़े इससे थोड़े से ज्यादा हैं। ये रोड एक्सीडेंट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, पर्सन किल्ड और पर्सन इंजर्ड, ये अगर हम देखें तो ये भी बहुत ज्यादा है। अगर हम मेजर पैरामीटर्स ऑफ रोड स्टैटिस्टिक्स को देखें 2017 में और 2005 में, आप देखो एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या 94,000 थी, 2017 में आते आते लगभग 12 साल में वो बढ़ करके 1,47,000 हो गया है। और अगर ये किसी हम परिवार से जाकर पूछे जिनके यहाँ पे मृत्यु हुई है तो वो इसको समझ पाएंगे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, अदर रोडवेज में अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा 2017 में करीब करीब 30% 36% लोगों की मृत्यु नेशनल हाईवेज में हुई है। स्टेट हाईवेज में करीब 26% लोगों की मृत्यु, अदर रोड्स जो रूरल रोड्स होंगे या उसमें करीब करीब 37% की मृत्यु है। रेसिडेंशियल एरिया, ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है, आप जहां सोसाइटी में रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल एरिया कंपनीज है उसके अंदर की सड़कें हैं, तीसरा मार्केट या कमर्शियल ओपन एरिया और अदर्स में, आपको ये देख करके बड़ा आश्चर्य होगा कि रेसिडेंशियल एरिया में लगभग 17% लोगों की मृत्यु है, जबकि इंस्टीट्यूशनल एरिया में सिर्फ 9,400 क्यों? क्योंकि वहां जब कोई व्यक्ति जाता है, नौकरी लेता है, तो उसको ट्रेनिंग मिलती है सेफ्टी की, कि फैक्ट्री के अंदर आकर के आपको कैसे गाड़ी चलाना है, सीट बेल्ट पहनना है, आपको लाल बत्ती का इस्तेमाल करना है। इंस्टीट्यूशनल एरिया में सेफ्टी की जो है ट्रेनिंग होती है। अगर मैं रोड फीचर के हिसाब से बात करूं, ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव है, स्ट्रेट रोड, कर्व रोड, ब्रिज, कलवर्ट, पॉट होल, स्टीप ग्रेड ऊंचाई वाला रास्ता, या फिर कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। जो स्ट्रेट रोड है, आप आंकड़े देखिए, जो स्ट्रेट रोड है उसमें एक्सीडेंट्स की संख्या 64% है, जबकि स्ट्रेट रोड में तो एक्सीडेंट कम होने चाहिए, जो इधर इधर घुमावदार है वहां ज्यादा होना चाहिए। और लोगों की मृत्यु 61%, 100 लोगों में 61 लोगों की मृत्यु स्ट्रेट रोड में। शायद हम स्ट्रेट रोड में सेफ्टी के सिद्धांतों को नहीं अपनाते, उसका मैं कारण आपको बताऊंगा कि वो क्या है। जंक्शन टाइप अगर आप देखें तो टी जंक्शन, वाई जंक्शन, फोरआर्म जंक्शन, स्टैगर्ड जंक्शन, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो टी जंक्शन होता है वन वे और उसको जाकर मिल रहा है, वहां पर करीब करीब 31% लोगों की मृत्यु। ये भी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपको पूछूं, सनी क्लियर वेदर है, बहुत अच्छा मौसम है, कोई प्रकार का प्राकृतिक स्ट्रेस नहीं है, या फिर बारिश हो रहा है, तीसरा फॉग हो, मिस्टी हो, ठंड के दिनों में धुंध हो, या फिर हेल हो, या फिर और कोई भी कारण हो, आप ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा करीब करीब 70% लोगों की मृत्यु क्लियर वेदर में होती है, बारिश के मौसम में, हेल में नहीं होती है। अच्छा सूर्य है, आप बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, उस समय शायद हमारा अटेंशन की कमी हो जाता है। ये भी जानकर आपको बड़ा तकलीफ होगा, मोटर के व्हीकल के हिसाब से, टू व्हीलर, ऑटो रिक्शा, कार, जीप, टैक्सी, बसेस, ट्रक, टेम्पो, ट्रैक्टर, अदर व्हीकल्स में आप देखेंगे तो आपको जानकर बहुत दुख होगा कि सबसे ज्यादा इसमें लोगों की मृत्यु टू व्हीलर्स में 33%। और ये टू व्हीलर्स, मैं आगे आपको और आंकड़े बताऊंगा, और नंबर टू है जो है कार, जीप और टैक्सी, 24% लोगों की एक्सीडेंट और 26% लोग इसमें मरते हैं। टू व्हीलर्स में करीब करीब 31% लोगों की मृत्यु होती है। ये और भी इंटरेस्टिंग है, एज ऑफ व्हीकल, गाड़ी कितना नया है, गाड़ी कितना पुराना हो रहा है, ये भी जानकर आपको बहुत दुख होगा। जो 5 साल से कम समय चला हुआ गाड़ी है उसमें करीब करीब 1,71,651 एक्सीडेंट्स, इन कंपैरिजन टू 42,939 जो 15 साल से ज्यादा की उम्र की गाड़ियां हैं। मतलब नई गाड़ी मिले तो हम उसको कैसे भी चला सके, पुरानी गाड़ियों में कम एक्सीडेंट होता है। ये भी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु सड़क में चलते हुए किसकी होती है? सबसे ज्यादा लगभग मित्रों 33% टू व्हीलर्स का होता है, और फिर नंबर टू जो आता है करीब करीब 18% कार टैक्सी वाले होते हैं, फिर 13% पेडेस्ट्रियन जो पांव से पैदल चलने वाले लोगों का होता है। ये और भी डेंजरस इंफॉर्मेशन है। किन लोगों की मृत्यु सबसे ज्यादा होता है? एज ग्रुप के हिसाब से आप अगर देखो तो करीब करीब 26% लोग 25 से 35 साल की उम्र के यंग लोग, और शायद ये 25 से 35 साल भारतीय संस्कृति के हिसाब से किसी की शादी हुई होती है, और 35 साल मान लो किसी की शादी 30 साल की उम्र में, 28 साल, 5 साल के अंदर वो पत्नी या तो विधवा होने वाली है। कितनी दुख की बात है। और ये जो हस्बैंड है इसको कैंसर नहीं हुआ है, इसको हार्ट अटैक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय हम शायद जिससे जिसके साथ हमने विवाह किया उसको, और शायद अगर बच्चा भी हो गया होगा तो कितना उम्र का बच्चा होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 10 साल के बच्चे को हम अनाथ कर रहे हैं। और जो दूसरा कैटेगरी है वो 18 से 25 साल, उसने तो भी जिंदगी जी नहीं, माता पिता बच्चे को पढ़ा लिख, 24 साल का बच्चा शायद इंजीनियरिंग पीजी करके अब वो नौकरी करके अपना जीवन को चलाने के कगार पर खड़ा है और उससे पहले गया। माता पिता कितनी आशाएं लेकर इस बच्चे को लालन पालन पोषण पढ़ाते लिखाते हैं, और 25 साल के अंदर 23% बच्चों की मृत्यु हो जाती है वो भी रोड एक्सीडेंट से, और 35 से 45 वाले माता पिता के घर में शायद बच्चे अब शादी के लायक हो गए हैं, अब इनका भविष्य सेटल कराने की जिम्मेवारी माता पिता, वो 22% लोगों की मृत्यु। अर्थात 18 से 45 साल की उम्र के मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये कितनी दुख की बात है कि इस पर हमारा अटेंशन ही नहीं है। ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और इस पर हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओवर स्पीडिंग, तेज गति से गाड़ी चलाना 72% लोगों की इंजरी और 66% लोगों की मृत्यु सिर्फ एक कारण से होती है, तेज गाड़ी चलाना। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोग गाड़ी तेज चलाते हैं? जो तेज गाड़ी चलाते हैं हाथ ऊपर उठाइए। कितने अच्छे हैं आप लोग, इतनी अच्छी तरह झूठ बोलते हैं ये भी मुझे समझ में आ रहा है। चलिए छोड़िए, मुझे याद आता है मैं हरियाणा में, हम रोड सेफ्टी का कार्यक्रम कर रहे थे, वहां हमारे कार्यक्रम में सिर्फ माताएं बैठी थी, एक भाई नहीं था। मैंने दीदी को कहा, दीदी मैं इन माताओं से क्या बात करूं, इन्होंने तो शायद जिंदगी में कभी गाड़ी भी नहीं चलाई होगी। दीदी ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, कार्यक्रम में बुलाया, भाई आए नहीं तो हम क्या कर सकते। मैंने कहा चलिए छोड़िए, अब इनसे ही बात करते। मैंने वो, और वो ना माताएं घूंघट पहन के, उनका चेहरा भी ना नजर आवे, मैंने वो माताओं को पूछा, माताएं आप लोग गाड़ी चलाते हैं? उन्होंने कहा नहीं। अब मैं उनको क्या बताऊं, सीट बेल्ट पहनो, हेलमेट पहनो, तो गाड़ी भी नहीं चलाते। मैंने थोड़ा सा बातों में थोड़ा फेर बदल किया और मैंने उनसे पूछा, चलो आप नहीं चलाते, आपके माता पिता आपके बच्चे चलाते हैं क्या? बोला हाँ चलाते हैं। मैंने कहा आपके बच्चे गाड़ी धीरे चलाते हैं कि फास्ट चलाते हैं? सभी माताओं ने एक साथ एक स्वर में कहा, बहुत फास्ट चलाते हैं गिरीश भाई। मैंने कहा वो आप उनको बोलते नहीं हो क्या? उन्होंने कहा अरे बोल बोल के थक गए, मानते कहां है, सुनते कहां है, समझते कहां है। मैंने कहा आप माता पिता बोलते हैं और वो समझते क्यों नहीं? बोला हमको नहीं पता, आप बताओ। मैंने कहा बच्चे आपके हैं या मेरे? आपके बच्चों के बारे में मैं कैसे बताऊं? बोला नहीं नहीं आप तो बहुत कुछ जानते हो, आप बताइए। मैंने कहा मैं एक बात बताता हूं, भाइयों और बहनों इस पर थोड़ा सा चिंतन करना कि गिरीश भाई जो कह रहा है उसमें कुछ भी सत्यता है या नहीं। मैंने कहा आजकल के बच्चे माता पिता जब कहते हैं कि बेटा धीरे गाड़ी चलाओ, धीरे गाड़ी चलाओ, धीरे गाड़ी चलाओ, तो सुनते क्यों नहीं है पता है क्यों? उन्होंने कहा बताइए क्यों? मैंने कहा क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है भारतवर्ष में, माता पिता चाचा मामा काका भतीजा मेरे जैसे शिक्षक, हम सब उसको सिर्फ एक ही शिक्षा देते हैं। और विशेष तौर पर माता तो 100% बस एक ही भाषा बोलती है, बच्चा पैदा हुआ उसके पहले माताजी चालू हो गई, जल्दी जल्दी होमवर्क कर, जल्दी जल्दी क्लास वर्क कर, जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी स्नान कर, जल्दी जल्दी सो जा, जल्दी जल्दी खाना खा, जल्दी जल्दी बड़ा हो। किसके लिए ताली बजाया? अपने लिए बजाया या सत्य बोलने के लिए बजाया? कमाल है, 18 साल तक जिस दिन उसको ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, हर चीज जल्दी 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 जल्दी। जिस दिन वो गाड़ी का चाबी लेकर ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आता है, पता है माताजी क्या कहती है? धीरे धीरे गाड़ी चलाना। और कमाल है, 18 साल तक आपने मुझे प्रोग्रामिंग कर दिया है, वो बच्चा ओवर स्पीडिंग, ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये एक बिहेवियरल साइंस है। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन ही इतना फास्ट हो गया है। एक चीज पूछना चाहूंगा, संसार में प्राकृतिक एक चीज बताइए जो जल्दी जल्दी होता है। 24 घंटे के बाद ही सूर्योदय होगा। आप चाहें कि भाई कल 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाए तो हो सकता है क्या? लेकिन जिंदगी में सफलता जल्दी जल्दी, कमाल है, ये नहीं हो सकता है। नंबर 2, भारत में ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड, इंग्लिश में कहते हैं इफ ऑन द रोड यू आर ऑन द राइट साइड यू आर ऑन द रॉन्ग साइड। भारत में गाड़ी चलाते समय आप सड़क के राइट साइड में अगर हैं तो इसका मतलब आप गलत साइड में हैं। मुझे तो भारत के कई शहरों में जाकर के समझ ही में नहीं आता उत्तर प्रदेश में कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जितने लोग इधर से जा रहे हैं उससे डबल लोग उधर से इधर भी आ रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता मैं लेफ्ट में हूं कि वो लेफ्ट में। आपने महसूस किया है? आपने अनुभव किया है? ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 6.4%। ड्रंकन ड्राइविंग, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स, ये तीसरा कारण। यूज ऑफ मोबाइल फोन, कार एक्सीडेंट में होने की संभावनाओं का एक मुख्य कारण, और वो है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। हम उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो है मोबाइल फोन। जंपिंग रेड लाइट, ट्रैफिक सिग्नल्स का उल्लंघन करना, और फिर कुछ भी कोई भी नो वायोलेशन एंड नॉट नोन, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो लगभग 20% लोगों का मृत्यु उसकी होती है। टाइप ऑफ लाइसेंस, जिनकी मृत्यु होती है या एक्सीडेंट्स, ये भी जानकर आपको बहुत तकलीफ होगी कि करीब 84% लोग जो एक्सीडेंट करते हैं, और कम से कम 80% लोगों की, सॉरी 2017 में 80% लोगों की जो एक्सीडेंट होती है उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। इसका मतलब है ड्राइविंग लाइसेंस एक कागज का टुकड़ा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमको बस एक ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, बाकी उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा के कोई नियम कानून सिद्धांतों के बारे में शायद बुरा नहीं मानना चाहिए। पैसे देकर हम अपने बच्चों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करते हैं, और शायद इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, आईडी कार्ड जैसा है, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि वो 18 साल का बच्चा मैक्सिमम डेथ होने के कारण है। लर्नर लाइसेंस करीब 7%, विदाउट वैलिड लाइसेंस सिर्फ 10% लोगों की मृत्यु होती है, और कहां 80% लोग। आप में से कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हाथ ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा। आपका कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है? जिन जिन का एक बार भी हुआ है वो जरा हाथ ऊपर उठाइए। क्या गिरीश भाई, पब्लिक में आप हम लोगों का ऐसे ऐसे हाथ ऊपर उठाओगे तो ये कोई अच्छी बात है क्या? चलिए, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, इसमें आप अगर देखोगे तो रूरल एरिया में ज्यादा लोगों का एक्सीडेंट भी होता है, मृतकों की संख्या भी रूरल एरिया में है। समय, ये भी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। आप बता सकते हैं 24 घंटे के कौन से समय में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता होगा? चलिए गेस करता हूं, देखते कौन किसको प्राइज मिल सकता है। बोलिए भाई साहब, एक मिनट। 4 से 5 बजे सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं भाई साहब। थोड़ा जोर से बोलेंगे। हाँ जी, 9:30 बजे रात को, दिन में 9:30 बजे। क्या स्पेसिफिक हैं, इनको अनुभव लगता है, ठीक है ना भाई साहब। ब्लू शर्ट वाले भाई साहब बोलिए। अच्छा, रात को 9 से 11, सुबह 9 से लेकर 11, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ उसी वक्त होती है। ब्रदर पीछे पीछे। हाँ जी, अच्छा देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स ये बताता है, पूरे भारत के आंकड़ों को लेकर के बताया गया है, परसेंटेज शेयर इन टोटल एक्सीडेंट्स। अगर आप इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि रात के शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे 18.4%, शाम के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 17.7%। तो अगर आप इन दोनों को समझ ले कि शाम के रात के 9 बजे तक सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, हो सकता है कि सब लोग घर में आने की जल्दीबाजी में होते हैं, उसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता होगा, उसकी वजह से होता है। लेकिन रात को अर्ली मॉर्निंग जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और वो हेवी ट्रक्स की वजह से होते हैं। अच्छा, अगर आप बता सकते हैं पूरे विश्व में भारत का नंबर किसमें होगा एक्सीडेंट्स में, विश्व के अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से? समय नहीं है इसीलिए मैं आपको बताता हूं, डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक्सीडेंट के रेट उतना ही है जितने डेवलप कंट्रीज में। और ये डेटा देखकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ था, भारत इंडिया में हर 1,00,000 लोग में 11 लोगों की मृत्यु होती है, और आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर आप देखें तो वहां पर भी 11 लोगों की मृत्यु पर 1,00,000 लोगों में होती है। और अगर आप इंजरी और एक्सीडेंट्स में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर 1,00,000 लोग में 545 लोग इंजोर्ड होते हैं, इन कंपैरिजन टू इंडिया जिसमें सिर्फ 38 लोग इंजोर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो हम अमेरिका को कई गुना पीछे छोड़ देते क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ये हुआ रोड। आप में से इंडियन रेलवे से कौन कौन आए हैं यहां पर जो कार्यरत हैं, जरा हाथ ऊपर उठाइए। अरे वाह, जरा भारतीय रेल के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए, क्योंकि भारतीय रेलवे वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं और वो जितने परसेंटेज लोगों को लेकर चलता है उसके कंपैरिजन में जो एक्सीडेंट्स है या मृतकों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए मैं भारतीय रेल को बहुत क्या बोलते हैं कृतज्ञता और बहुत अच्छी दृष्टि से देखता हूं क्योंकि बहुत मेटिकुलस प्लानिंग होती है। बस एक ही फैक्टर में उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मेडिटेशन के द्वारा ठीक हो सकता है। अगर आप देखें सन 2008-09 से लेकर 2015-16 या 16-17 में कोलिजन्स, मतलब आपस में टकराने में जहां 13 कोलिजन्स होते थे, सन 2016-2017 में सिर्फ 4 में आकर रुक गया, 13 से 4 में बहुत अच्छी प्रगति हुई। डीरेलमेंट, पटरी से गाड़ी उतर जाए जिसको हम डीरेलमेंट कहते हैं, वो करीब करीब 85 होता था 2008-2009 में, इट गॉट रिड्यूस टू 70। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट मार्जिनल डिफरेंस। लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेल ने इस पर बहुत ज्यादा चिंतन किया और उसके लिए बहुत ज्यादा उन्होंने प्रयास किया। 69 लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स होते थे विच रिड्यूस्ड ओनली 16 फ्रॉम 69 टू 16। फायर, आग, आप ट्रैवल कर रहे हो और उसमें आग लग गया, वो 3 ऐसी घटनाएं घटी। और 2015-16-16-17 में 0, एक भी आग पूरे 365 दिन नहीं हुआ। और मिसलेनियस जो था 7 अलग अलग प्रकार के होते थे। हाँ, जोर से भारतीय रेल के लिए ताली बजाइए। और अनलाइक रोड जो 2008-2009 में मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक किलोमीटर्स के हिसाब से 905 इन मिलियंस, इतने किलोमीटर के ये ट्रैवल करते थे, मतलब इतना एरिया को उन्होंने कवर किया था, ये बढ़कर 2015-16 में 1,144 मिलियन किलोमीटर्स, इतना ज्यादा इन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाया लेकिन एक्सीडेंट्स की के संभावनाओं को कम किया। कैजुअल्टीज में अगर आप देखें, किल्ड एंड इंजर्ड में ये थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि ज्यादा यात्री इसमें ट्रैवल करने लगे। सन 2000-2001 में सिर्फ 55 यात्रियों की मृत्यु हुई थी, 286 की क्या बोलते इंजर्ड हुए थे, वो 0.01 पर मिलियन पैसेंजर्स थे। 2016-17 में आकर वो 156, क्योंकि शायद लोगों की संख्या ज्यादा, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, और 289 लगभग सेम इंजरी हुआ लेकिन मृतकों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो गई। ये बहुत अच्छा डेटा है, मुझे नहीं पता आप इसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, थोड़ा टेबल बड़ा है। अगर आप ब्रॉड कॉजेस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स अगर देखें, मुख्य कारण आपको पता चलेगा, ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय है और इसीलिए भारतीय रेल बोर्ड, रेलवे बोर्ड, भारत के जितने भी लोको पायलट्स हैं वहां पर ब्रह्मा कुमारीज को निमंत्रण देते हैं, यहां पर भी काफी सीनियर ऑफिसर्स आए हैं। और ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, सन 2000-2001 में फेलियर ऑफ रेलवे स्टाफ, अर्थात वो जो लोको पायलट की गलती की वजह से जो एक्सीडेंट्स हुए थे वो 293 था, वो कम होकर के 59 पे आ गया है। लेकिन फिर भी मेजर कॉज ऑफ रेल एक्सीडेंट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट। फेलियर ऑफ पर्सन अदर देन रेलवे स्टाफ,
किसी और व्यक्ति की वजह से अगर हुआ है वो 109% था, 109 था, वो घट करके 19 आ गया है। फिर फेलियर ऑफ इक्विपमेंट, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक, इलेक्ट्रिकल, SNT, सैबोटाज, कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी चीजों को देखेंगे, वो परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन एक चिंता की विषय ये है कि ह्यूमन एलिमेंट, और वो भी उसमें रेलवे स्टाफ की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, फटीग, थकान, 8-8 घंटे की ड्यूटी, वो सब जो है वो मेजर फैक्टर्स है। ये सब होते हुए भी वन ऑफ द सेफेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द रेलवे। इसके लिए मैं वापस चाहूंगा कि हम भारतीय रेल के लिए जोरदार हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाएं। वो अपना जी जान से प्रयास करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत एलिमेंट्स तो आ ही जाता है। अनमैंड लेवल क्रॉसिंग, मतलब जहां पर ट्रेन जाती है वहां क्रॉसिंग है लेकिन वहां पर कोई उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है, वो भी 48 से लेकर के 16 तक इतने कम एक्सीडेंट्स पे लेकर के आए। मैं आपको थोड़ा सा, ये तो मेरा डेटा था, आपको ये विषय चिंताजनक लगती है ये सब डेटा देख करके? हाँ या ना? आपको लगता है एज अ पेरेंट, एक माता पिता के हिसाब से, एक वेल विशर के हिसाब से, एटलीस्ट हमें अपने परिवार के जो नए लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं और खुद भी, ये सुरक्षा के नियमों को हमको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा? ऐसे आपको लगता है कि ये विषय बहुत ही सिंपल है, इसको हम चिंता नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा? मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूं या कुछ बातें बताता हूं जिससे कि हम इन बातों पर अटेंशन रखें तो शायद हमारा जीवन यात्रा में इंजरी या मृत्यु का को हम अवॉइड कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट अभी नया आया है, उसके हिसाब से चालान बहुत ज्यादा हो गया। पहले जहां 100 रुपया होता था अभी मिनिमम 500 रुपए, 1000 रुपए है। ड्रिंकिंग ड्राइविंग पे पहले कोई चार्ज ही नहीं होता, आज सीधे 5000 रुपए, 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट है। पहले रोड सेफ्टी खुद को करना पड़ता था, आज रोड सेफ्टी एक शब्द में आके रुक गया है, वो है चालान। चालान के डर से मैंने देखा है नवयुवक गाड़ी चला रहा है, हेलमेट रेयर व्यू मिरर के ऊपर रखा है, जैसे वो 500 मीटर देखता है कि ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा है, वो तुरंत उठाकर अपने सिर पर, उस चालान के डर से। क्या खूब किसी ने कहा है, ट्रैफिक चालान की बढ़ती हुई कीमतों से इतना डर गया हूं कि आज कुर्ते पैजामे पर भी बेल्ट पहनकर घूमता हूं। ट्रैफिक चालान की बढ़ती कीमतों से इतना घबरा गया हूं कि कुर्ता पैजामा पर भी बेल्ट पहनकर बाहर जाता हूं। तो बताइए, अगर सरकार ऐसे कड़े नियम नहीं अपनाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा? मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो को देखिए। अगर देवी देवताएं भी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? प्लीज वॉच दिस वीडियो। विष्णु जी, मां दुर्गा, गणेश जी, सबके वाहन आ गए, व्हीकल्स आ गया, ठीक है ना? अब वो ड्राइवर हैं, वो गाड़ी में बैठ के जाना चाहते हैं। प्लीज वॉच। कोई भी गाड़ी आगे जाने को इच्छुक नहीं है। Even those who protect you, protect their head. वो बिना मुकुट के, हेलमेट के। तो क्या दोस्तों, हम बिना हेलमेट और मुकुट के गाड़ी चलाना चाहिए? क्या खूब किसी ने कहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हेलमेट पहनिए और सुरक्षित रहिए, हेलमेट पहनिए सुरक्षित रहिए, सीट बेल्ट पहनिए सुरक्षित रहिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए सुरक्षित रहिए, अपनी बेहुदा हरकत और बहस से सिर्फ
मात्र सरकार का विरोध कर सकते हो, अपनी बेहुदा हरकत और बहस से मात्र सरकार का विरोध कर सकते हो, यमराज का नहीं। किसके साथ हम बहस कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं कि हेलमेट नहीं पहन सकता, सीट बेल्ट नहीं लगा सकता, कौन हमको ये कहने के लिए कह रहा है और किस भाव से कह रहा है? अपनी सुरक्षा के लिए ना, और हमें तकलीफ होती है हेलमेट पहनने के लिए। इवन दोज हु प्रोटेक्ट यू प्रोटेक्ट देयर हेड्स, सो प्लीज प्रोटेक्ट योर ओन। और इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं कुछ आपको, जैसे मैंने आपको कारण भी बताया है, वैसे मैं आपको सुरक्षा के बारे में इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं। अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो, जितना हम आज सतर्क रहेंगे उतना हम कल जीवित रह सकते हैं। हैव अनदर डे बाय बीइंग सेफ टुडे। जो भी सड़क सुरक्षा या फिर किसी भी प्रकार की सुरक्षा है उसको हम पालन करें। द प्राइस फॉर एन एक्सीडेंट इज ऑलवेज हाई, दुर्घटना का जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, जान माल का नुकसान है। सेफ्टी इज अ चीप एंड इफेक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी, बस एक सीट बेल्ट ही तो लगाना है, बस एक हेलमेट ही तो पहनना है, अपनी गति को थोड़ा सा नियंत्रण ही तो करना है। सेफ्टी इज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर अ रिच फ्यूचर, आपको यहां कोई मंथली या फिर क्या बोलते हैं 3 महीने में कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम भी नहीं भरना है, बस ये सीट बेल्ट हेलमेट और कुछ सुरक्षा के नियमों का पालन करना है। सेफ स्टेइंग एक्सीडेंट फ्री एवरीवेयर, हर समय एक्सीडेंट से हम मुक्त रहें, उसके लिए बस एक कदम एक कदम बढ़ाना है, वो है सेफ्टी थ्रू एवरी पर्सन। सिर्फ हम सुरक्षा के नियमों का पालन कर रहे हैं और बाजू वाला ना करे, सामने वाला ना करे, उसकी गलती से हमारा भी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना और जीवन को अच्छे स्थान पर पहुंचाना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक यात्रा है इसमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे उस चीज को करते, किस भाव से, किस दृष्टिकोण से आप उस नियमों का पालन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। More than hitting at the target, it is the way we aim at the target which is very important. आप लक्ष्य को भेद रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन किस लक्षण से आप उस भाव को भेद, वो ट्रैफिक पुलिस के डर से आप सीट बेल्ट पहन रहे हैं तो लक्षण खराब है, लेकिन क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके हम कर रहे हैं? दो प्रकार की यात्रा है, एक है फिजिकल जर्नी, कौन करता है? एक ड्राइवर। किसके माध्यम से करता है? गाड़ी के माध्यम से। किसके साथ करता है? सहयात्रियों के साथ। और कैसे करता है? अलग अलग प्रकार से, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। इसी तरह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, कौन करता है? वो है एक आत्मा, जो आपको सुबह के सत्र में बताया गया। किसके माध्यम से करता है? इस शरीर के माध्यम से। किसके संग करता है? माता पिता, सगे संबंधी, मित्र यार, दोस्त, समाज के साथ। और कैसे करता है ये यात्रा? वो है हमारे कर्म, हमारे बोल, हमारे शुद्ध विचार। और जितने हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, हमारे विचार बहुत अच्छे होंगे, हमारे बोल बड़े मृदु होंगे, मीठे होंगे, उतना जीवन की यात्रा सुखद और अपने गंतव्य स्थान तक हम पहुंच सकते हैं। डोंट बी ब्लाइंड, एक्सीडेंट hurts, सेफ्टी doesn't. चेक बिफोर यू wreck yourself. डोंट बी सेफ्टी ब्लाइंडेड, अंधे मत बनिए सेफ्टी के लेकर। बी सेफ्टी माइंडेड, अपने मन में सेफ्टी के हर नियमों का पालन करें। इफ यू ड्रिंक एंड ड्राइव यू माइट एज वेल स्मोक, अगर नशे की हालत में हम गाड़ी चलाएंगे तो फिर हमारी क्या उठ जाएगी? क्या उठ जाएगा? अर्थी उठ जाएगा। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है मुझे लगता है, नो सेफ्टी नो पेन। अगर हम सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें दर्द महसूस होगा, और अगर हमने सुरक्षा के नियमों का पालन किया तो हमें दर्द की अनुभूति नहीं होगी, नो पेन। अंग्रेजी में NO और KNOW दोनों का जो प्रोनंसिएशन वो सेम है, लेकिन उसका भाव में बहुत अंतर है। आपको मैं पूछना चाहूंगा कुछ मिथ, देखते हैं आपको कितना इसके बारे में। पहला गलती, देर इज नो नीड टू फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स पास्ट 10 पीएम। रात के 10 बजे के बाद ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं? 100% करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं रात को 10 बज गया ना, अभी तो ट्रैफिक नहीं होगी तो कौन देखता है। नंबर टू, यूजिंग हैंड्स फ्री डिवाइस टू अटेंड फोन कॉल्स इज सेफ। मैं इंस्पेक्टर साहब मोबाइल में ऐसे नहीं बात कर रहा था, इसमें वायर लगा करके उसका दोनों ईयरफोन कान में लगाकर गीत सुनकर फोन आता है तो यहां पर आजकल तो आपके गाड़ी में भी है, यही दबा करके मैं अगर फोन पर बात करूं तो क्या ये नियमों का उल्लंघन है? 500% है। ये समझना बहुत जरूरी है। नंबर थ्री, ओवरटेकिंग इज परमिटेड ओनली ऑन द राइट। भारत में लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है तो आपको सिर्फ राइट दिशा से ही ओवरटेक करना है, जरूरी नहीं है। आप लेफ्ट से भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके सामने वाली गाड़ी उसके सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक कर रही है और उसने राइट को ओवरटेक करने का इंडिकेटर दिया है, आप उसके लेफ्ट से ओवरटेक कर सकते हैं। अगर वहां पर बहुत ज्यादा स्पेस है, वहां ज्यादा कोई ज्यादा दूसरे वाहन नहीं चल रहे, देन यू कैन टेक फ्रॉम द लेफ्ट ऑल्सो। इट इज नॉट एन ऑफेंस टू रिवर्स अ व्हीकल ऑन अ वन वे रोड। वन वे रोड होता ना, वहां से वापस गाड़ी दूसरी गाड़ी नहीं आती, वहां पे रिवर्स लेना भी अपराध है। आप ये नहीं कह सकते कि वन वे ही चल रहा है ना तो मैं रिवर्स लेकर गाड़ी चला सकता हूं। पार्किंग एनी वेयर इज फाइन इफ इट डज नॉट हैव अ नो पार्किंग बोर्ड। हम कभी कभी बहस करते पुलिस वाले से, नो पार्किंग का तो बोर्ड लगाया ही नहीं है तो फिर मैंने गाड़ी यहीं लगा दी ना। ये हमारा कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन के गेट के सामने आप गाड़ी नहीं लगा सकते हो, आपको स्कूल के सामने हॉस्पिटल के सामने गाड़ी नहीं लगा सकते हो, ऐसे कुछ एरियाज है। ये कॉमन सेंस की बात है, जरूरी नहीं है कि वहां हर जगह नो पार्किंग का बोर्ड ही लगाएं, तो भी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर चालान लगा सकता है आपको। इट इज ओके टू ड्राइव विथ योर हेडलाइट्स एट हाई बीम ऑल द टाइम। हम हाईवे पे जा रहे हैं, उसमें एक लो बीम होता है एक हाई बीम होता है, हमको क्या फर्क पड़ता है सामने वाले को, हम तो हाई बीम पे ही गाड़ी चलाते, ये भी ठीक नहीं है। हाई बीम पर सामने वाले के आंखों में इतनी रोशनी आती है कि उसको दिखता ही नहीं है डिवाइडर कहां पर है। आपको अपने लाइट्स का इस्तेमाल करने का भी ज्ञान, उसकी भी समझ, उसका भी इंफॉर्मेशन आना चाहिए। एंड लास्ट, इट इज ओके टू ड्राइव इवन आफ्टर ड्रिंकिंग इफ द ड्राइवर हैड फूड आफ्टर ड्रिंकिंग। मैंने शराब पिया उसके बाद खाना खा लिया, ऐसा लगता है जैसे कंपार्टमेंट में पहले शराब उसके ऊपर खाना, अब तो मैंने शराब पी नहीं और फिर गाड़ी चला सकता हूं। नियम ये कहता है 30 mg आपके 100 ml में अगर शराब पाया जाएगा आप गाड़ी चलाते वक्त, आपको ड्रिंकिंग ड्राइविंग का केस आपके ऊपर लग सकता है। द परमिसेबल लिमिट इज ओनली 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। उसका एक मशीन होता है, उस 30 mg के ऊपर आ गया तो वो आपको चलान कर सकता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैंने 2 घंटे पहले खाया था, 2 घंटे पहले शराब पिया था, उसके बाद तो मैंने खाना वाना सब खा लिया है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है हाथ में, आपके पॉकेट में था, आपने दूसरा शर्ट पहना है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूं। एक एम परिवहन करके एक एप्लीकेशन है, वहां पर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट को, परमिट के डॉक्यूमेंट को आप उसको स्कैन करके उस एम परिवहन वाले एक ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं भी, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास ये सब नहीं है, ट्रैफिक पुलिस आपको कहता है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है और आप बोलते हैं भूल गए, आप तुरंत अपना मोबाइल निकाल करके वो एन परिवहन के साइट में अगर आप उसको देख सकते हैं, उसको कहते हैं डीजी लॉकर, DIGI, प्लीज लिख के रखे, आज डाउनलोड करे, डीजी लॉकर करके एक एप्लीकेशन वेबसाइट है, वहां आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं, तुरंत आप उसको दिखा सकते हैं ट्रैफिक पुलिस को तो वो आपको छोड़ देंगे। जरूरी नहीं है, यू शुड ओनली हैव अ फिजिकल डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर व्हीकल। डिजिटल इंडिया के प्रावधान अनुसार उन्होंने ये डॉक्यूमेंट को भी पेपरलेस बनाया है, लेकिन
ध्यान देने वाली बात, आपने अपने व्हाट्सएप में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अगर डाउनलोड करके आप दिखाओगे तो दैट इज एन ऑफेंस, वो परमिसेबल नहीं है। आपको डिजी लॉकर के अंदर, एम परिवहन के अंदर ही वो डॉक्यूमेंट वैलिड है, उसमें आपका आधार कार्ड बस वो सब डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसकी वैलिडिटी को वो चेक करते हैं। आप तो किसी का नाम भी फोटो लगाकर, फोटो खींच करके दिखा सकते हैं, साहब ये मेरा है, उसकी वैलिडिटी को वो चेक करते हैं। इसीलिए सिर्फ डिजी लॉकर और एम परिवहन वाले साइट में ही ये होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा गोल्डन टिप्स बता देता हूं जल्दी जल्दी। पहला है, मेरा नम्र निवेदन है, अपने मन की गति, अपने बोल की गति, अपने सोच की गति, क्या खूब किसी ने कहा। कभी कभी हो जाता है ख्यालों का ट्रैफिक जैम, संकल्प ही नहीं चलते, एकदम डेड हो जाते, और कभी कभी तो संकल्प ट्रैफिक तोड़ करके चलते। मैं कितना भी उसको नियंत्रण करने का प्रयास करता हूं लेकिन वो चलता ही रहता है। कहते हैं द नेचर आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर इनसाइड। मेजर कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट है स्पीड। इट इज बेटर टू बी मिस्टर लेट देन टू बी लेट मिस्टर। ये है दूसरा मुख्य कारण। डोंट ड्राइव इंटॉक्सिकेटेड नहीं। आज तो मोबाइल का भी नशा है, टेक्स्ट करते करते हम गाड़ी चलाते हैं। डोंट टेम्प्ट फेट, टेक्स्ट कैन वेट, स्टॉप द टेक्स्ट एंड स्टॉप द रेक्स। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये थोड़े फॉरेन के वीडियोज हैं, देखिएगा कि किस प्रकार से ये एडवर्टीजमेंट बनाया है, कोई सही घटना नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, आपको पता चल सकता है कि उसका इम्पैक्ट, हमको पता ही नहीं है कि हम एक सेकेंड का डिस्ट्रैक्शन से क्या हो सकता है। प्लीज वॉच। वो टेक्स्ट भेज रही है। ये फास्ट फॉरवर्ड किया है वो जो।
Do you know that you're in my lane? No, not at all. Are you not paying attention? Are you texting? I was just checking in with my mom. I was telling her that I thought we'd be home by 6. It's okay. There's enough time. Just pay attention. I'm not even halfway through my text.
वो बोल रही है जस्ट पे अटेंशन, बोला मैं तो मोबाइल में टेक्स्ट भेज रही हूँ, वेयर इज द टाइम, आई एम नॉट इवन गोइंग टू लुक अप। टेक्स्ट में दे रही है और वो दूसरे लेन में जा रही है, उसको वो कहती है मुझे ऊपर देखने का भी समय नहीं है।
There's no way. I'm not even going to look up. My babies are in the car.
वो दूसरी वाली बहन बोल रही है मेरे बच्चे हैं उस कार में। यू हैव टू पे अटेंशन, गाड़ी चलाना इतना गैर जिम्मेवारी हरकत नहीं कर सकते। एक सेकंड की गलती। शराब की बोतल अभी दिख रहा है, एक सेकंड में आंखों से ओझल। ये बस एक लास्ट दिखाता हूं। कुछ लोगों को उन्होंने सिनेमा थिएटर में बिठाया और वो सब मूवी देखने के लिए बैठे। और सबके मोबाइल में, जैसे आपके साथ एक कविता बहन ने एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया था ना, और उनको सामने दिखाया। सब देख रहे हैं स्क्रीन में। अब सबके मोबाइल पे रिंग बजाया गया, सब अपना मोबाइल देखने लगे। मोबाइल यूज इज नाउ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बिहाइंड द व्हील्स। ये आपके मेरे घर में भी हो सकता है। इन बातों का थोड़ा सा हमको ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है।
इन नियमों का पालन करेंगे, दो चीजों का एटलीस्ट हम अवॉइड कर सकते हैं, एक है स्पीड ड्राइविंग और दूसरा है मोबाइल का इस्तेमाल। सुरक्षित रहें, जीवन की यात्रा को सुखदायी बनाएं, ऐसी मेरी आपसे ईश्वर परमात्मा से बहुत शुभकामनाएं हैं। हम एक मिनट मेडिटेशन करेंगे और इस क्लास को समाप्त करेंगे, और फिर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मन की गति को नियंत्रण करना, उसका हमारा मेडिटेशन का कार्यक्रम है। मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत अच्छी तरह एंजॉय करें, मेडिटेशन और साइलेंस को। बस एक मिनट का मेडिटेशन करेंगे, फिर हम इंटरनेशनल योगा करेंगे। हल्के होकर के बैठें, अपना सारा ध्यान अपने जीवन के प्रति लेकर के आएं, अपने आने वाले कल को देखें। क्या मेरा आने वाला कल सुरक्षित है? एक मिनट के लिए अपने मन को थोड़ा सा स्टॉप फॉर सेफ्टी, क्या मैं जीवन को इतना मूल्यवान समझता हूं? डू आई कंसिडर द वैल्यू ऑफ लाइफ दैट आई विल फॉलो ऑल ट्रैफिक रूल्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स? चालान के डर से ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े जाने के डर से मैं आज से सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं करूंगा, मैं सेफ्टी के नियमों का पालन मानव जीवन के मूल्य को समझकर करूंगा। मैं समाज में एक आदर्श ड्राइवर बनूंगा, मुझे देख सब लोगों को ये प्रेरणा आनी चाहिए कि हमें सड़क सुरक्षा के हर नियम का पालन करना है, उसका हम अध्ययन करेंगे, उसको अपने जीवन में हम आत्मसात करेंगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, कम वॉट मे, आई विल फॉलो ऑल ट्रैफिक रूल्स, आई विल ऑलवेज बी सेफ, एंड आई विल बिकम एन एम्बेसडर ऑफ सेफ्टी। मैं सेफ्टी का दूत बनूंगा, हर घर घर में हर व्यक्ति जो चालक है उसको सेफ्टी के नियमों से अवगत कराऊंगा। अपने चाल अपनी चलन से मैं, मेरा परिवार और हमारा समाज सुरक्षित है, और सुरक्षित करने के लिए जिम्मेवारी से मैं हर नियमों का पालन करूंगा। मुझे अच्छा लग रहा है अपने बारे में। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर ऑन द रोड, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी सेफ्टी कॉन्शियस। ओम शांति। धीरे से आंखें खोलें, अपने दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, पूरे चेहरे को लगाएं, आंखों को, माथे को, गाल को। बहुत अच्छा, थैंक यू। विशिंग यू अ वेरी सेफ लाइफ अहेड। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता गिरीश भाई जी का। आप सभी ने बहुत अच्छा एक वीडियो देखा कि जो सतयुग के देवी देवताएं हैं उनका हेलमेट कैसा था? गोल्डन हेलमेट था, हेलमेट उनका भी था। जैसा भाई साहब ने बताया कि बिना ताज लगाए उनके वाहन भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो उनका जो हेलमेट था वो गोल्डन था क्योंकि वो सतयुग के देवी देवताएं थे। और आज जो कलयुग के देवी देवताएं हैं उनका हेलमेट कैसा है? ब्लैक है। तो आप सभी यहां से ये प्रतिज्ञा करके जरूर जाएं कि आप जब भी फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, और टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। इतना तो आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ये आपके जीवन के लिए कहा जा रहा है, ये किसी और के लिए नहीं कहा जा रहा है। आपकी हम सबको चिंता है, इसलिए हम लोग चाहते यही है कि आप सुरक्षित यात्रा करें। तो आप सभी यही यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाएं कि हम जब भी वाहन चलाएंगे तो जो भी वाहन चलाएं उस नियम का पालन जरूर करें, चाहे सीट बेल्ट हो चाहे हेलमेट हो। दूसरा, आपने एक वीडियो देखा कि मोबाइल से या तो आजकल सेल्फी का जमाना बहुत तेजी से चल रहा है, सेल्फी लेते हुए गाड़ी चलाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। आपको एक छोटी सी घटना हम सिर्फ 2 मिनट के लिए बताएंगे। मैं बनारस से हूँ और वहाँ कुछ दिन पहले पेपर में दिया था कि 3 बच्चे बाइक से जा रहे थे और वो एक तो बिना हेलमेट लगाए थे, दूसरा 3 बच्चे बाइक से जा रहे थे। जो आगे चलाने वाला था वो सेल्फी लेने लगा, वो ये नहीं देख पाया कि सामने हमारे क्या है, और मंदिर की दीवार थी, उसी मंदिर के दीवार से जाके इतना जोर से टकराया कि 2 बच्चे तो ऑन स्पॉट वहीं तुरंत खत्म हो गए। एक बच्चा बचा जिसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, बहुत उसके ऊपर खर्च हुआ, प्लास्टिक सर्जरी हुई, क्या क्या हुआ, कुछ स्वस्थ हुआ, फिर उसने डिमांड किया कि मुझे बाइक चाहिए। सबको ये उम्मीद थी कि शायद अब इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद इसका जीवन बदल जाएगा, कुछ तो संभलेगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा स्वस्थ हुआ उसका फिर डिमांड होने लगा कि मुझे बाइक चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब जहां नियम तोड़ेंगे वहां कुछ न कुछ हमारे साथ दुर्घटनाएं जरूर होंगी, इसलिए हम सभी नियम को पालन करते हुए, नियम को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हम सुरक्षित और लंबी यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ हम भाई साहब का बहुत धन्यवाद करते हुए प्रदीप भाई जी को बुलाना चाहेंगे। जो प्रदीप भाई जी 1982 बैच के IRSSE ऑफिसर हैं, फिलहाल ये नेशनल एकेडमी ऑफ इंडिया रेलवे में बड़ौदा में स्थित हैं। भाई साहब नॉर्थ रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे आदि अनेक रेलवे बोर्ड के जवाबदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। भाई जी ने इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग के उच्चतम शिक्षा प्राप्त की है। वह गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने मास्टर ऑफ बिजनेस ऑस्ट्रेलिया के उच्चतम यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया है। अपने जीवन कार्य में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां निभाई हैं, जैसे कि एडिशनल जनरल मैनेजर वेस्टर्न रेलवे, चीफ सेफ्टी ऑफिसर साउथ ईस्टर्न रेलवे, डिवीजन रेलवे मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे आदि अनेक जिम्मेवारियों को निभाते हुए देश विदेश कार्यरत घूम चुके हैं। इन्होंने हाई स्पीड ट्रेन का जापान से ट्रेनिंग भी कंप्लीट किया हुआ है। उनकी कार्य विशेषता अनेक नेटवर्क डिजाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। तो हम चाहेंगे कि भाई साहब यहाँ आए और ब्रह्मा कुमारी निर्जा बहन से हम यही अनुरोध करेंगे कि आप भाई साहब का बुके और बैच के द्वारा स्वागत करेंगे, भ्राता प्रदीप भाई जी का। निर्जा बहन भाई साहब को शाल उड़ा के, बैज लगा के और बुके दे रही हैं। प्रदीप भाई साहब के बारे में हम थोड़ा सा आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे होंगे ये कोई नहीं जानता। अगर सपने सच न हो तो रास्ते बदलिए इरादे नहीं, अगर सपने सच न हो तो रास्ते बदलिए इरादे नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं जड़े नहीं। तो बहुत मेहनत बहुत लगन के साथ आप यहां तक पहुंचे हैं, तो हम सभी चाहेंगे कि कुछ शब्द भाई साहब सुनाएं और आप सभी उसका लाभ लें। भ्राता प्रदीप भाई जी, ओम शांति।
ओम शांति। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ये आज मौका मिला कि इस कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेडिटेशन जो स्पीड सेफ्टी और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हो रही है, इसमें मैं भाग ले सकूं। तो मैं बहुत ही आभारी हूं ब्रह्म कुमारीज का कि मुझे इसमें मौका दिया गया भाग लेने का। और जिस प्रकार से जो दो दिन मैंने प्रोग्राम देखे हैं, इतने अद्भुत प्रोग्राम थे, डांस, ड्रामा, संगीत और ये व्याख्यान और ये वीडियो क्लिप्स के द्वारा जो रोड ट्रांसपोर्टेशन में सेफ्टी के बारे में कैसे कैसे किस तरीके से जागरूकता फैलाने का काम ये हो रहा है यहाँ पे इस मंच के माध्यम से, बहुत ही अद्भुत है। और मुझे नहीं मालूम था कि इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर इतना अच्छा काम इस संस्था द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इतनी सारी अवेयरनेस नहीं है। हमें लगता है केवल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और इन सभी चीजों को जोड़ के इतना सुंदर मैसेज दिया गया। और आज जो गिरीश भाई ने जो जितना ये डेटा एक्सीडेंट के बारे में बताया, इतना तो शायद रेलवे के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी। आज इन्होंने इतना बढ़िया अच्छे तरीके से प्रोग्राम्स में बताए, मैंने बहुत सारे पिक्चर आ रहे हैं उसके, मैंने स्लाइड्स भी फोटो भी लिए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्लोगन इतने अच्छे अच्छे बनाए हैं कि इसका बहुत ही ऑडियंस पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा और सड़क दुर्घटनाएं कम करने में बहुत ही इससे कमी आएगी। जैसा कि आपने सर बताया होगा, मैंने कुछ दिनों पहले अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू सुना था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं हर साल और जिनमें 1.5 लाख मौतें होती हैं, और जिसमें कि उन्होंने बताया कि 18 साल से 35 साल के जो युवक हैं, जो लोग हैं, वो 65% हैं इसमें, 2/3 लोग इस वाली युवा लोग इसमें इनकी डेथ होती है। और इससे आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी में कितना लॉस, कितना देश को, समाज को कितना लॉस हो रहा है। अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो पर डे 410 डेथ हो रही है रोड एक्सीडेंट में, और पर आवर 17 डेथ हो रही है पर आवर। तो आप समझ सकते हैं कितनी ग्रेव सिचुएशन है। और ऐसे में ऐसा प्रोग्राम जो यहां पर आज किया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फायदेमंद है। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं अगेन फिर से धन्यवाद करता हूं, मुझे ये मौका मिला यहां आने का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता प्रदीप भाई जी का। अभी दीदी लोग बैठ चुकी हैं मेडिटेशन अर्थात योग के लिए, आप सभी भी साइलेंट में बैठ करके मेडिटेशन का लाभ लें। ओम शांति।